ओम शांति। मन मना भव, मध्याजी भव। बाबा का जो ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, इस ज्ञान की दो बूंद कौन सी हैं? बाबा कहते ना, बाबा कहता है ये ज्ञान क्या है, सैक्रिन है ना, मीठी सैक्रिन है। और इसकी मीठी सैक्रिन की बूंद कौन सी है, पहली बूंद कौन सी है, मन मना भव। मतलब ज्ञान का सार क्या है, मन मना भव, और लक्ष्य क्या है, मध्याजी भव। तो मन मना भव है विधि, मन मना भव क्या है, विधि, और लक्ष्य क्या है, क्या बनना है, क्या बनना है, मध्याजी बनना है। मध्याजी माना, मध्याजी देखो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, एक होता है पुरुष, एक होती स्त्री, है ना। तो अधिकतर हम इसी भान में रहते हैं ना, या तो पुरुष के भान में या स्त्री के भान में। किंतु मध्याजी है जो ना पुरुष के भान में रहे ना स्त्री के भान में रहे। मध्याजी मतलब बीच में ऐसी स्थिति कि जो इस देह भान से परे की स्थिति हो, ना स्त्री का भान हो ना पुरुष का भान हो, अर्थात आत्मिक भान हो, देह का भान जरा भी ना हो। तो मन मना भव अगर हम रहेंगे तो हमारा देह का भान निकल जाएगा, हम क्या बन जाएंगे, आत्म अभिमानी बन जाएंगे, हम फरिश्ते बन जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे। देवताओं में देह का भान होता है क्या? देवताओं में देह का भान नहीं होता है। हालांकि होते तो स्त्री पुरुष वहां भी है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण वहां होते हैं, किंतु तो उनमें यह भान नहीं होता ये स्त्री है पुरुष है। देह भान आत्मिक भान होता है, मैं आत्मा हूं ये भी आत्मा है, हर एक के प्रति आत्मिक भान होता है, देह का भान जरा भी नहीं होता है, है ना। तो हमें ये लक्ष्य हमारा मन मना भव का अर्थ क्या है, इसी के आज हम गहराई में जाएंगे, मन मना भव, और कैसे फिर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें, मध्याजी बन जाएं, ऐसी स्थिति हमारी आ जाए इसी जीवन में कि देह का भान बिल्कुल खत्म हो जाए, हम एकदम देही अभिमानी बन जाएं, हम एकदम से देह से पार चले जाएं, अशरीरी बन जाएं, फरिश्ता बन जाएं, है ना। तो ऐसा कैसा हो सकता है? मन मना भव का जो अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो मन मना भव का सिर्फ ये कि अपने मन को बाबा में लगाओ, या ये कहें मन से बाबा को याद करो, मन से बाबा को याद। हम मन, हमारे मन में क्या भरा हुआ है? आज बाबा ने कहा स्थाई याद कैसे ठहर सकती है, स्थाई याद कब रह सकती है? हमारे मन में क्या भरा हुआ है, हमारे दिल में क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है हमारी बुद्धि में या दिल में, क्या भरा हुआ है? जो बुद्धि में भरा होता है वो ही हमारे मन में भरा होता है, जो हमारे दिल में जिसकी याद होती है, जो हमारे दिल में बसा होता है, उसकी वो ही हमारे मन में उसकी स्मृतियां होती हैं। तो हमारे दिल में क्या भरा हुआ है, हमारे दिल में हमारी देह भरी हुई है। जरा सा देखो कुछ होता है तो क्या होता है, कहीं पे कोई फुंसी हो जाए, घुटने में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, हार्ट में कुछ हो जाए, हार्ट की आर्टरी बंद हो जाए, डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, नहीं, सिर दर्द हो, क्या होता है, वही बात याद आती रहती है ना, ये देह मुझे ये हुआ है, मुझे आर्टरी बंद हो गई है, मेरे को पेट में गैस बनी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा लीवर बढ़ गया है, मेरी रीढ़ की हड्डी में मणका सक गया है ना, जिससे बात कर हर समय वही बात बुद्धि में रहेगी। हमारी बुद्धि में हमारी देह है ना, जिसकी भी बाबा ने आज मुरली में कहा आम खाएं तो क्या आम याद आए तो आम योग हो गया ना, है ना, लाल बत्ती की अगर याद आए तो लाल बत्ती योग हो गया, है ना, किसी को भी हम याद करते योग हो गया ना, हम योगी तो हैं, किसके योगी, दुनिया में सभी हैं, है ना, किसके योगी हैं, देह के संबंधियों के योगी हैं, है ना, देह के योगी हैं, देह के पदार्थों के योगी हैं, जो हमारी आदतें बढ़ गई हैं उन आदतों के आलस के योगी हैं, है ना, नींद के योगी हैं, है ना, नींद आती है ना, नींद आती, नींद के योगी हैं, है ना। तो जो ये भी चीजें हैं हमारी, जो हमारी दिल में या बुद्धि में फंस गई हैं बातें, जो दिल में बैठ गया है उसकी याद ऑटोमेटिक आती है, तो हमारे मन में सिर्फ बाबा ही रहे, बाबा की याद आए, इसके लिए क्या चाहिए? मन में चार बातें होती हैं, मन के चार एस्पेक्ट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुरली चली थी, आपने सुना भी होगा, 31/12/99 की मुरली थी, तो बाबा ने कहा था मन में चार बातें हैं। मन में कौन सी बातें, मन के चार एस्पेक्ट कौन से हैं? पहली है स्मृति, स्मृति माने याद, यादें है ना, स्मृतियां। स्मृति से स्थिति बनती है, जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बनती है। जैसे मुझे स्मृति है, अगर मान लीजिए मुझे स्मृति है मैं डॉक्टर हूं, मैं हार्ट का डॉक्टर हूं, तो मुझे मेरी स्थिति बन जाएगी ऐसी, कोई भी हार्ट के पेशेंट मुझे कुछ कहेगा तो मैं इमीडिएटली उसका इलाज बताऊंगा। अगर मैं भूली जाऊं मैं हार्ट का डॉक्टर हूं तो क्या होगा? कोई मुझे आके कहे डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, तो मैं कहूं मुझे क्यों बताते हो, जाके हार्ट के डॉक्टर को बताओ, मुझे क्यों बता रहे हैं आप, है ना। तो स्मृति से स्थिति बनती है, राइट। और फिर दूसरी चीज है वृत्ति, स्मृति वृत्ति, वृत्ति में ना एटीट्यूड, हमारा नजरिया दृष्टिकोण, है ना। जैसे मान लीजिए मैं मेरे मन में जो स्मृति है उसी हिसाब से मैं दूसरों को देखूंगा, मैं कौन हूं, मेरी स्मृति मेरी स्मृति में क्या रिकॉर्ड है, तो मैं उसी नजर से आपको देखूंगा। जैसे ब्रह्मा शिव बाबा को क्या स्मृति है, मैं इन सब आत्माओं का बाप हूं, ये सब आत्माएं, मैं इन सब का बाप हूं, तो उसकी वृत्ति कैसी हो गई हमारे प्रति, आत्मिक वृत्ति, रूहानी वृत्ति हो गई, है ना। बाबा को स्मृति सदा है, हमको क्या होता है, हमको स्मृति सदा है, मैं आत्मा हूं स्मृति सदा नहीं रहती। क्या स्मृति रहती है, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं टीचर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूं, है ना, नहीं ऐसा? क्या स्मृति रहती है हमको? हमको देह भान की स्मृति रहती है, देह के संबंधों की स्मृति रहती है। तो हमारी वृत्ति कैसी हो जाती है फिर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, है ना। तो जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, है ना। तो जैसी स्मृति हमारी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी स्मृति कैसी हो गई। तो स्मृति मन की जो पहली बात है वो स्मृति है, दूसरा एस्पेक्ट है वो वृत्ति है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, है ना। स्मृति से स्थिति बनती है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। फिर वृत्ति के नेक्स्ट जो है वो भावना है, भावना, ये भी मन का ही एक एस्पेक्ट है। तो भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, क्या बनते हैं, मन से भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, वृत्ति से वायुमंडल, मतलब आसपास ऑरा बन जाता है, जैसे जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसा आसपास वायुमंडल मन ऑरा आभामंडल बन जाता है, और फिर भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, और फिर भावना जैसी होती है वैसे संकल्प चलते हैं, वैसे विचार चलते हैं, संकल्प चलते हैं, और संकल्प से सृष्टि बनती है, राइट। तो मन में चार बातें आती हैं। बाबा ने उस दिन कहा था बच्चे, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ चिंतक और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप, मन में चार बातें हैं, है ना। तो जितना हम चिंतन करते हैं, विचार एक बिंदु है, मैंने एक विचार किया, मैंने किसी को देखा, मेरे मन में एक विचार उठा, ठीक है, तो वो विचार एक बिंदु है, मैंने वो विचार बार बार किया, एक बार किया, दो बार, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, मन में बार बार विचार चला, तो वो विचार फिर भावना बन जाता है। अगर कोई विचार को हम बार बार करें और गहराई से करें तो क्या बन जाता है, भावना बन जाता है। इंग्लिश में हम कहते हैं इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जैसे किसी व्यक्ति को हम मिलते हैं तो बार बार उसके संग, वो बार बार मुझे सुबह मिलता है, शाम को मिलता है, दोपहर में मिलता है, बार बार मुझे ओम शांति करेगा, नमस्ते करता है, मैं भी उसको करता हूं, कभी मुझे कोई टोली दे देता है, मुझे गिफ्ट देता है, तो क्या होता है, मुझे बार बार उसके ही विचार चलेंगे ना, तो मेरी उसके मन में उसके प्रति क्या हो जाएगी, भावना हो जाएगी, कि भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहन जी बहुत अच्छी है, दीदी बहुत अच्छी है ना। तो ये इमोशनल चेंज हो गया है ना, भावना बन गई। तो अगर कोई संकल्प बार बार करें हम तो वो हमारी भावना बन जाती है और भावना से वाइब्रेशन निकलने लगते हैं। जैसे एक मां और बच्चा एक दूसरे के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, मां को बार बार बच्चे की याद आती है, बच्चे को बार बार मां की याद आती है। बच्चा रहता है अमेरिका में और मां रहती है यहां पे आबू में, तो क्या होता दोनों के बीच में? 20,000 किलोमीटर दूर है दोनों, नहीं यहां से 20,000 किलोमीटर दूर है, और दोनों जो मां सोचती है बच्चे को टच होता है, जो बच्चा सोचता है मां को टच होता है। बच्चा मां को फोन करता है, मां कहती है बेटा तेरे से मैं भी बात करनी सोच ही रही थी, बस अभी तेरा फोन ही आ गया। बच्चा दिल्ली में रहता है, मां यहां रहती है, 700 किलोमीटर दूर रहते हैं आपस में, तो आपस में वो टेलीपैथी कहते हैं ना, उसको टेलीपैथी कहते हैं। तो ऐसे वाइब्रेशंस एक दूसरे को फैलते हैं। कोई भी दो आत्माएं अगर एक दूसरे के बारे में गहराई से सोचती हैं, भावना से सोचती है, भावना जब भावना होती है तो वाइब्रेशन फ्लो करते हैं। ऐसे जब हम आत्माएं हम अगर वैसे देखें तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया के आत्माओं से, कि तो जब बाबा के हम बच्चे हैं, जब मैं आत्मा हूं ये भी आत्मा है, अब सारे विश्व के जितने भी मनुष्य हैं हम सब एक बाप के बच्चे, तो आपस में कौन हो गए? भाई भाई हो गए। तो जब हम अपने को आत्मा समझ के बाप से कंबाइंड हो जाते हैं और इस बात को बहुत गहराई में चले जाते हैं, बहुत गहराई से अपने को आत्मा समझ के परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर? क्या होता है? आत्मिक भाव पैदा होता है, आत्मिक भाव पैदा होता है, और आत्मिक भाव पैदा होने से ऑटोमेटिक विश्व की सब आत्माओं के प्रति हमारे वाइब्रेशंस जाते हैं, क्योंकि हम आत्मा के नाते से भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। जैसे मैंने मां और बाप का, मां और बच्चे का एग्जाम्पल दिया, तो हमारी उन आत्माओं में, उन आत्माओं को हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं। बाबा की कोई भी पॉइंट, मुरली का एक पॉइंट ले लो, जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे तुम बाप को याद करो, तुम मुझे याद करो, ये सबसे मीठी मिठाई है ना, मीठी मिठाई है, ये सबको बांटो, सबको बताओ, सब, अलफ और बे को याद करो, यही था ना आज का। तो ये बाबा की एक लाइन हम ले लें, इस लाइन को बहुत गहराई से हम सोचें, बहुत गहराई सोचें, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, परमात्मा बाप को याद करो, ये बहुत मीठी मिठाई है। मीठी मिठाई का मतलब क्या है? मीठी मिठाई का मतलब क्या है? जैसे मैंने इस पे चिंतन किया, मनन चिंतन मंथन सिमरण, बाबा की जो मुरली है वो हमने सुनी सुबह, उसके बाद उसको मैंने बार बार इसको सोचा, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मुझे याद करो, ये बहुत मीठी मिठाई है, सबको बांटो, अलफ और बे का परिचय दो। तो ये लाइन मैंने बार बार सोची, रिवाइज की मन में, है ना, मन में रिवाइज की, चिंतन, मन के पास चिंतन, गहराई में जाओ, बाबा ने कहा मुझे याद करो, ये मीठी बो, ये बहुत मीठी मिठाई है, ये मीठी मिठाई कैसे है, मुझे याद करो, ये तो ठीक है अपने को आत्मा समझ के मैंने बाप को याद किया, तो उससे क्या फायदा होगा, मीठी मिठाई क्या है? तो बाबा से बात करो, गहराई में जाओ, ये मुझे बहुत मीठी मिठाई कैसे बनी, और सबको बांटो, फिर ये मिठाई सबको बांटो, कैसे बांटो मिठाई, मिठाई बनी क्या, मैंने बाबा को याद कर मिठाई बन गई क्या? मिठाई क्या, क्यों कहा बाबा ने? तो मैंने बाबा से बात, फिर चिंतन किया, गहराई में गए तो कनेक्शन बाबा से लग गया, फिर मंथन, बाबा बीच में आ गया, तो बाबा से कहा बाबा ये आपने कहा मीठी मिठाई कैसे है, तो बाबा ने कहा बच्चे मिठाई का मतलब क्या है, मीठे का मतलब क्या है, मीठा माना सत्व प्रधान, मीठा माना सत्व प्रधान, सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर। बच्चे जितना मुझे अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करोगे तो तुम क्या बन जाओगे, सत्व प्रधान बन जाओगे। सत्व प्रधान माना ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर, रूहानी प्यार से भरपूर, अतींद्रिय सुख से भरपूर, आनंद से भरपूर, सर्वशक्तियों से भरपूर। तो जब मैं सातों गुणों से भरपूर हो गया, सातों प्रधान हो गया, तो क्या होगा? अब ये सातों प्रधानता बांटो, अब ये बांटो। जब मेरे बोल में क्या होगा फिर? मेरी 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 दृष्टि कैसी हो जाएगी? जिससे भी मिलूंगा तो आत्मिक भाव से मिलूंगा, है ना? जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, फिर वैसी वृत्ति से देखूंगा उनको ना। तो मेरी वृत्ति बदल गई ना, अब मैं आत्मिक भाव से, तो बटी नहीं बटी, मीठा बोलूंगा, है ना, प्यार से बोलूंगा, है ना, ज्ञान युक्त, मेरी बातचीत ज्ञान युक्त होगी, ऐसे ही बातचीत नहीं होगी, है ना, पवित्र बोल होंगे, है ना, शांति से बोलूंगा, रूहानी प्यार से बोलूंगा, अतिंद्र सबकी अनुभूति मुझे भी हो रही है उनको भी होगी, आनंद की अनुभूति मुझे भी हो रही है उनको भी हो जाएगी, सर्वशक्तियां मेरे पास भी भरपूर है उनको भी मिल जाएंगी, समझ रहे? ऐसे बटी, मेरा मस्तक देख के उनको क्या लगेगा? मेरे को मुंह से बोलने की बात नहीं, मान ली बाबा ने कहा गूंगा भी बोल, गूंगे को भी ये ज्ञान दे सकते हो, बहरे को भी दे सकते हो, अंधे को भी दे सकते हो, है ना, याद है ना आज की मुरली? तो इसमें गूंगे को भी दे सकते हो, कैसे? ये जो आत्मिक भाव है ना, आत्मिक भाव उसको टच होगा, तो जितना आप गहराई से बाबा के एक एक मुरली के पॉइंट को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन मंथन, मक्खन निकला, मक्खन क्या निकला? सत्व प्रधान बनना है। जितना हम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इवन सोते भी बाबा को याद करेंगे, कुछ भी काम करते बाबा को याद करेंगे, हर कर्म करते बाबा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना हम क्या बनते जाएंगे? मिठाई बनते जाएंगे, मिठाई माना सत्व प्रधान बनते जाएंगे, सातों गुणों से भरपूर होते जाएंगे, राइट? अब मेरी ये भावना बन गई ना, जैसे ना, तो गहराई में गया तो चिंतन और मंथन माना, फिर मैंने बाबा को बीच में ले लिया तो अब बाबा से पूछा जो चीज मुझे समझ नहीं आई, है ना, तो अब मंथन से मुझे मक्खन मिला, अब सिमरण, जब मैं याद करूं, जब मैं कर्म में आऊं तो वो मुझे याद रखूं, वो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरण माना सिमर सिमर मतलब कार्य करते हुए वो बात याद रहे, सिमरण ये नहीं है कि मीठी मीठी हमारी मीठा मना सतो प्रधान, मीठा मना सतो प्रधान, मीठा मना सतो प्रधान, ऐसा नहीं, सतो प्रधान नहीं, मुझे अब उस स्थिति में स्थित होकर के ये अपना व्यवहार करना है, तो ये अंदर मेरे दिल रिकॉर्ड होता जाएगा, रिकॉर्ड होता तो नया संस्कार बन जाए, नई आदत बन जाएगी, नई रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पहले क्या था, मैं लोगों को देहभान से मिलता था, ये बहन है, ये बड़ा आदमी है, ये मेरा मेरा मेरे से बड़ा डॉक्टर है, ये मेरा जूनियर डॉक्टर है, ये नर्स है, इस तरह से मिलता था। अभी किस बात से, मैं अभी किस भाव से मिलता, ये पेशेंट है, ये बहुत सीरियस पेशेंट है, ये कम सीरियस है, ये ओपीडी का पेशेंट है ना, अभी इस भाव से मिलना ही बंद हो गया, अभी तो इस भाव से मिलना कि हाँ हम सब, ये पेशेंट भले है किंतु आत्मा है, ये मेरा भाई है, शिव बाबा का बच्चा है, तो मैं उस भाव से देखूं, डॉक्टर है, जूनियर है चाहे सीनियर है, कोई भी है तो आत्मा है, तो मैं उस भाव से उनसे व्यवहार करूं, नर्स है तो उस भाव से व्यवहार करूं, भले वो हमें उसके हिसाब से मैं व्यवहार तो करेंगे, डॉक्टर के साथ डॉक्टर का व्यवहार, नर्स के साथ नर्स का व्यवहार, वार्ड बॉय के साथ वार्ड बॉय का व्यवहार, है ना, जो भी हमारे साथ में कॉन्टेक्ट में, उस भाव से तो करेंगे, किंतु मन में ये गहरी स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हम एक बाप के बच्चे हैं, राइट? तो ये ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाएगा। तो जितना जो संकल्प, जो ये मुरली क्या है बेसिकली, बाबा बाबा की मुरली, संकल्प बाबा मुरली में देता है, उस मुरली को बहुत गहराई से चिंतन करो, पहले मनन करो, फिर चिंतन करो, गहराई में जाओ, फिर क्या करो, मंथन करो, और फिर सिमरण करो, सिमरण माना कार्य में लगाओ, तो रिकॉर्ड होता जाता है। तो ये इस तरह से हम जब, तो मैंने पहले बताया, जैसे संकल्प को पहले गहराई में जाओ, चिंतन करो, तो क्या बन गया, वो भावना बन गई, और जो उस भावना को लंबा कर दो, उसी भावना को लंबा कर दो, प्रोलॉन्ग कर दो, मैंने बिंदु बिंदु लगाए, मैंने 10 बार वही बात बार बार गहराई में गया तो भावना बन गई, उसी भावना को मैंने बार 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 किया तो एक सर्कल बन गया, सर्कल बन गया, सर्कल माना वृत्त बन गया, हिंदी में कहे वृत्त बन गया, तो उससे जो अब वही विचार बार बार मेरी बुद्धि में आता रहेगा, मैंने एक बार सर्कल कंप्लीट कर लिया ना, वही विचार बार बार बुद्धि में ऑटोमेटिक आता रहेगा, तो इसे कहते हैं वृत्ति बन जाना, वृत्ति माना दृष्टिकोण बन गया, उससे वायुमंडल पैदा हो गया, अब वायुमंडल पैदा हो गया तो वो आसपास आभामंडल इकट्ठा हो गया, अब जितना मैं इस वृत्ति को बार बार रिवाइज करता रहूं, इस वृत्ति को अंदर पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा, उस आभा मंडल में मैंने क्या सोच रहा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मेरा शिव मेरा बाप ज्ञान का सागर है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, और मैं उसका संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सजन बच्चा सब कुछ संबंध उसके साथ है। बार बार मैं इसी बात को सोच रहा हूं, बार बार उसी को मैं मनन कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, उसी में चिंतन उसमें गहराई में जा रहा हूं, उसी की मैं गहराई में जा रहा हूं, मतलब मैं एक एक संबंध को अनुभव कर रहा हूं, एक एक संबंध को बाप के साथ संबंध को अनुभव कर रहा हूं, मां का संबंध क्या है, बाबा मेरी मां कैसे है, बाबा मेरा बाप कैसे है, मां के रूप में मुझे बाबा क्या देता है, बाप के रूप में क्या देता है, टीचर के रूप में मुझे बाबा मुझे क्या दे रहा है, सतगुरु के रूप में क्या दे रहा है, उस अनुभूति को मैं करूं, बंधु के रूप में बंधु माना बड़ा भाई के रूप में मुझे क्या देता है, क्या अनुभूति, बंधु की अनुभूति क्या होती है, है ना। एक दिन अभी मुरली थी ना पीछे बीच में, बड़े भाई के रूप, भाई के रूप में बाबा से खेलो, दोस्त बना के खेलो, है ना। सखा के रूप में क्या देता है, साजन, बाबा मेरा साजन है, साजन के रूप में मुझे क्या देता है, सज्जन के रूप में मुझे क्या प्राप्ति होती है बाबा से, उसकी गहराई में जाओ। बच्चे के रूप में बाबा कहते मुझे अपना बच्चा बना लो, मुझे अपना वारिस बना लो, तो क्या मिलेगा, उसकी अनुभूति क्या होती है, इसकी गहराई में जाओ, मंथन करो, इसका चिंतन करो, मंथन करो, फिर मक्खन निकलेगा, वो अनुभव हो जाएगा, ठीक है, वो फिर अंदर रिकॉर्ड हो गया, तो उससे मेरी वृत्ति बनती गई, ठीक है, मेरा वृत्ति, मेरा वायुमंडल आसपास इकट्ठा हो गया। अब उस वायुमंडल में क्या इकट्ठा हो गया, वायुमंडल में इकट्ठा हो गई शांति इकट्ठी, एक तो ज्ञान इकट्ठा हो गया आसपास, पवित्रता इकट्ठी हो गई, शांति अंदर तो है बाहर भी इकट्ठी हो गई, उसके वाइब्रेशन बन गए, शांति प्यार खुशी आनंद शक्तियां इकट्ठी हो गई, और इस वायुमंडल में मैंने अभी क्या है, मुख से तो बोलना, बहरा तो सुन नहीं सकता मेरी बात, बहरा सुन सकता है, बहरा सुन, अंधा मेरे इशारे देख नहीं सकता है, ना मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख सकता है, किंतु अंधा भी मेरी बात समझ जाए, बहरा भी मेरी बात समझ जाए, कैसे, सिर्फ उस वायुमंडल में आए, मान लीजिए मेरा आभा मंडल 4 फुट तक है, 8 फुट तक है, जैसे बाबा जब आते हैं, जब बाबा आते हैं, बाप दादा की जब पधरामणी होती है दादी गुलजार के तन में, तो सारा हॉल कैसा हो जाता, हॉल का वायुमंडल कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है हॉल का वायुमंडल, वही हॉल होता है, वही हॉल होता है ना, उसके पहले लोग बात भी कर रहे होते हैं आपस में, और बाबा के आने के बाद क्या होता है, बात करना चाहो तो भी बात नहीं कर सकते हो, सबके सब अशरीरी हो जाते हैं, बाबा अशरीरी है, शरीर माना बिना शरीर वाला है, बाबा को शरीर नहीं है, तो सबके सब मतलब आत्मसदा बाबा सदा निराकारी है, भले देह में आया है, ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म शरीर लेके आया है, दादी के तन में आया है, स्थूल शरीर में आया है, फिर भी निराकार है ना, सबको निराकारी की अनुभूति हो जाती है। तो बाबा का वायु, बाबा का आभामंडल कहां तक है, पूरे हॉल में बाबा का आभामंडल है, हर एक उस आभामंडल में बिना ज्ञान सुनाए भी सोल कॉन्शियस हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, तो बाबा का आभामंडल कितना हो गया, 300 फुट हो गया, है ना, खाली यहां 300 फुट नहीं हुआ, बाहर भी बैठे उनको भी फील हो रहा है, इधर बैठे उनको भी फील हो रहा है, इधर बैठे उनको भी फील हो रहा है, देखते ना लोग वहां बाहर भी बैठते हैं ना, इसमें बरामदे में बैठते ना, इधर भी बैठते, उधर भी बैठते, उधर भी बैठते, और हर अपने अपने सेंटरों में लोग टीवी पे भी देख रहे हैं, उनको भी फील हो रहा है ना, अमेरिका में भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी देख रहे हैं, सबको क्या फील हो रहा है, मैं आत्मा हूं, सोल कॉन्शियस, बोलने को दिल नहीं कर रहा है, बाबा बोल रहा है, कुछ को दिल नहीं कर रहा है बाबा को, और कुछ बोलने के दिल ही नहीं है, आत्मिक अनुभूति हो रही है, तो ये बाबा का आभा मंडल है ना, राइट। तो ऐसा आभा मंडल, तो बाबा ने इतना बड़ा आभा मंडल है बाबा का, जब वो निराकार स्थिति में है, हमें क्या करना है, हमें भी बाबा जैसा बनना है, बाप समान बनना है, तो हम भी इतना अभ्यास करें, चलते फिरते उठते बैठते श्वासों श्वास ये अभ्यास करें, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। दादी जानकी बोलती है ना, देखो तो दादी जानकी भी आती है जब क्लास में, दादी जानकी आती है। चलो बाबा तो आते हैं महीने में एक बार आते हैं, दादी तो हमारे पास लगभग रोज आती है ना, कभी कभी मिस हो जाता है। पर दादी के आने से भी कैसा होता है, कैसा होता है, दादी का भी आभा मंडल बड़ा है ना, तो सारी क्लास कैसे होती है, कितना उमंग उत्साह हो जाता है, कितनी खुशी हो जाती है ना, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया, जैसे वो भी हमारे जैसे ही है, उन्होंने तपस्या करके, ये तपस्या, तपस्या माना एक एक बल, एक बल है ना, एक की याद, एक मन और बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या माना मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना, मन में भी वही बुद्धि में भी वो, एक ही संकल्प, बाबा 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 बाबा, मैं आत्मा, बाबा किस, बाबा का बच्चा, मैं आत्मा हूं, मैं कौन, मैं आत्मा हूं शिव बाबा की संतान हूं, मैं आत्मा हूं शिव बाबा की संतान हूं, बस ये तपस्या। दूसरा संकल्प घुसे नहीं अंदर, और दूसरा संकल्प अंदर एंटर नहीं करना है, अलाउ नहीं है अंदर आना, इसे कहते तपस्या। एकाग्र हो गए बिल्कुल, एक एक के अलावा एक नामी है ना, एक नामी, एकाग्रता और एक रस्थिति, एक के अलावा किसी की याद नहीं, एकांतवासी, एक के अंत में खो गए, मैं आत्मा शिव बाबा के अंत में खो गई, शिव बाबा के प्यार में समा गई, ऐसी स्थिति। जितना मैं करता जाऊं, जितनी मैं करती जाऊं, जितनी मैं आत्मा करती जाऊं, उतना मेरा आभा मंडल बड़ा होता जाए, फिर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, जो भी मेरे पास आएगा, मेरा 10 फुट औरा हो गया, 20 फुट औरा हो गया, तो 20 फुट में जो आ जाएगा अपने आप शांत हो जाएगा, उसको अपने आप समझ आ जाएगा मैं आत्मा हूं, देह नहीं, मैं परमात्मा की संतान हूं, अपने आप टिक जाएगी बुद्धि, अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। बाबा कहते ना अंत में क्या हो, गली गली में म्यूजियम हो जाएंगे, गली गली में सेंटर हो जाएंगे, कैसे सेंटर हो जाएंगे, बाबा के 9 लाख बच्चे हैं है ना, 9 लाख बच्चे इतनी तपस्या करके अपने आप को सेंटर बना लें, क्या बना लें, बिना बोले है ना, क्या लगे हर बच्चे के मस्तक से, क्या दिखाई दे, ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, बाबा दिखाई दे है ना, तो क्या होगा, बिना बोले क्या होगा, सबके सब क्या हो जाएंगे, अपने आप ज्ञान का प्रभाव फैल जाएगा, अपने आप लोग आत्मिक स्थिति में टिकते जाएंगे, ज्ञान सुन, अंत में सुनने वाला कोई होगा नहीं, होगा क्या सुनने वाला, सुनाने का समय होगा, सुनने का समय होगा, ज्ञान सुना सकते हैं, अभी भी लोग इंटरेस्ट कहां लेते सुनने में, कहते अनुभव कराओ है ना। दादियों के पास लोग मिलने जाते हैं, वीआईपी आते हैं, जो बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, मंत्री आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, या कुछ और फिल्म कलाकार आते हैं, तो वो क्या करते हैं, औरों से तो बहुत मिलते हैं, दीवारों से थोड़ा अनुभव होता है, बिल्डिंग से अनुभव होता है, डायमंड हाउस से अनुभव होता है क्या, डायमंड हाउस से, न्यू डायमंड हाउस से अनुभव होता है क्या ना, वहां से अनुभव, वो तो उनके पास हमसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनके पास बहुत फैसिलिटीज है, उनके पास बड़े बड़े साधन, हमसे बड़े साधन उनके पास है, वो हमारी तपस्या से दादियों के पास जाते हैं, जाते बैठते ही बिना दादी ने कुछ बोला नहीं है उनको अनुभव हो जाता है, जो चीज कभी अनुभव नहीं हुई, शांति, शांति वन में आते ही, अनजान आदमी को शांति वन में आते ही शांत मन शांत हो जाता है, कैसे, वायुमंडल, यहां के रहने वालों की स्थिति, उनका एटीट्यूड, उनकी वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो वृत्ति में हमारा ऐसा हो जाए, तो मनमना भाव का अर्थ ये है कि जो बाबा की मुरली है, जो बाबा का ज्ञान है, बाबा की जो बातें हैं, बाबा ने जो सुनाया, बाबा कहते हैं एक परमात्मा ही, आज की मुरली में था, एक परमात्मा ही सत्य है, और कोई सत्य नहीं है, बाकी सब झूठ है, भगवान ने जो योग सिखाया उससे क्या बना, क्या बनता है, स्वर्ग, और मनुष्य ने जो सिखाया उससे क्या बन गया, स्वर्ग क्या बन गया, नरक बन गया ना, क्या सिखाया मनुष्य ने, क्या सिखाया, हठ योग सिखाया, जप तप करना सिखाया, भक्ति पूजा करना सिखाया, व्रत उपवास करना सिखाया, भजन करना सिखाया, कीर्तन करना सिखाया, प्राणायाम करना सिखाया, शवासन करना सिखाया, 12 तरह के आसन सिखाए, और ना जाने क्या क्या सिखाया, उससे क्या बना, क्या बन गया, नरक बना ना, तो हमें क्या करना है, हमें वो करना है क्या, हमें प्राणायाम तो करना है ना, नहीं करना, बाबा कहते सिर्फ मुझसे सुनो, जो मैं कहता सिर्फ वो करो, बाकी कुछ मत करो। मैं आपको बताऊं, एक रिसर्च आई थी पीछे, अभी जर्मनी के रिसर्च, जर्मनी में रिसर्च हुई थी, इस जर्मनी में, उसमें बताया गया कि जो लोग प्राणायाम करते हैं ना, प्राणायाम जो करते हैं, जस्ट मैं बाय द वे ये पॉइंट बता रहा हूँ, कई लोग प्राणायाम करते हैं, बाबा के बच्चे भी कई लगे रहते हैं इस चक्कर में ना, प्राणायाम करने में ना, तो प्राणायाम करने में उन्होंने 6 महीने पहले एक एंगर कंटेंट स्केल होता है, पहले उन लोगों का एंगर नाप सकते हैं आप, इस मनुष्य में कितना एंगर है, क्रोध नापा जा सकता है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में आपको टिक करना होता है, चॉइसेस होती हैं, है ना, उस क्वेश्चन को आप आंसर दे दीजिए और उसको फिर हम कंप्यूटर में डालते हैं, की होती है उसकी, तो उसको फिर हम उसमें एंगर कंटेंट कितना गुस्सा है उसमें निकल आता है, इसमें कितना गुस्सा है, पहले ही उन्होंने गुस्सा नाप लिया कुछ एक ग्रुप का, मान ले 30 लोग उन्होंने लिए, 30 लोगों का गुस्सा नाप लिया हर एक का, फिर उनको प्राणायाम करने को कहा, 6 महीने उन्होंने प्राणायाम का अभ्यास किया, तरह तरह का प्राणायाम अलग टाइम पे किया, जैसे बताया गया वैसे किया, तो देखने में आया 6 महीने के बाद उनका गुस्सा एंगर कंटेंट कई दो गुना से ज्यादा 2.3 टाइम बढ़ गया था, गुस्सा बढ़ गया था, क्यों, क्योंकि हट से करते ना, श्वास तो हमारी नेचुरल प्रक्रिया है ना, श्वास एक नेचुरल प्रक्रिया है, सदा चलने वाली प्रक्रिया है, उसका कनेक्शन शांति से है, जितना आप शांत होंगे उतना क्या होगा, उतना आपका सांस अपने आप गहरा जाएगा और धीरे धीरे चलेगा, और जितना चिंता होगी, गुस्सा होगा, डर होगा, सांस ऊपर ऊपर चलेगा और फास्ट चलेगा, तो श्वास का कनेक्शन शांति से है, तो आप हट से कर रहे हो, हट से लंबा सांस ले रहे हो, खींच रहे हो, फिर रोक रहे हो, फिर बाहर निकाल रहे हो, कभी दाई नाक से निकाल रहे हो, कभी बाई नाक से निकाल रहे हो, कभी कपाल भाती कर रहे हो, है ना, तो क्या कर रहे हो, हट से कर रहे हो ना, आप अपने बच्चे को बैठे उसको हट से कराओ, ये कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, तो क्या होगा, खुश होगा क्या, उसका दिल नहीं करने का, खुश होगा क्या, आपके सामने तो करेगा, फिर बाद में क्या करेगा, करेगा फिर बाद में, तो ऐसे जब जो चीज आप हट से कराएंगे ना शरीर से, वो शरीर रिएक्शन करेगा, ये बाबा ने नहीं सिखाया, ये मनुष्यों ने सिखाया था, बाबा कभी सिखाया, बाबा ने कभी हट प्राणायाम सिखाया क्या, बाबा ने कोई आसन करने बताया क्या, हम तो करते हैं, मनुष्य बाबा के बच्चे तो करते हैं, करने चाहिए ना, हमारे शरीर की कोई बीमारी भी, हमारे मन की भी कोई बीमारी, नींद नहीं आती है या चिंता होती है, डर लगता है, या कोई और भी बात, डिप्रेशन हो गया है, या कोई बीमारी भी है, मन की या तन की, हमारे विकर्मों के कारण आई है ना, हमने जो पाप काम किए उसके कारण आई ना, वो प्राणायाम से कैसे ठीक हो जाएगी, वो आसन करने से कैसे ठीक हो जाएगी, बाबा से बहुत प्यार से योग लगाएंगे ना, जब निरंतर पावरफुल योग होगा, वो विक्रम विनाश होगा, तो उससे ठीक होगी ना, याद से विक्रम विनाश होगा क्या, प्राणायाम से विक्रम विनाश होगा, किससे होगा, आसन लगाने, सूर्य नमस्कार करने से विक्रम विनाश हो जाएगा, पाप कर्म विनाश हो जाएगा ना, बाबा कहता सैर करो, मेरी याद में सैर करो ना, तो जितना हम ये करते जाएंगे, जितना हम ऐसे, हमारी वृत्ति वायुमंडल बनता जाएगा, और वायुमंडल के असर में आके फिर हम काम करेंगे, जब मेरा वायुमंडल ही ऐसा बन जाएगा मेरे आसपास, उस असर में आके मैं जो भी काम करूंगा वो मेरा इंप्रेशन बनता जाएगा, इंप्रेशन मेरे अंदर इंप्रेशन बनता जाएगा, नए इंप्रेशन, स्पिरिचुअल इंप्रेशन बनेंगे, आत्मा परमात्मा के अनुभव, एक एक संबंध की अनुभूति के साथ, वो अनुभूति के अत्यंत सुख का अनुभव क्या होता है, शांति का अनुभव क्या होता है, रूहानी प्यार का अनुभव क्या होता है, अत्यंत सुख का अनुभव क्या होता है, आनंद का अनुभव क्या होता है, एक एक शक्ति का अनुभव क्या होता है, बाबा से एक एक संबंध का अनुभव क्या होता है, वो अंदर रिकॉर्ड होते जाएंगे, नए संबंध, नए अनुभव हो रहे हैं, नई रिकॉर्डिंग हो रही है, नए संस्कार बन रहे हैं, वो नई रिकॉर्डिंग जो है ना मेरे साथ क्या, वो नए संस्कार जो बन रहे हैं वो, और नए बिलीफ सिस्टम बनते जाएंगे, कि ऐसा क्या होगा जैसे बाबा मेरे साथ है, बिलीफ सिस्टम क्या होता है, मैंने शनिवार को ये किया तो काम खराब हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काटा तो काम खराब हो जाएगा, उसकी शक्ल देखी तो काम खराब हो जाएगा, ये होता है ना, ये फिजिकल इंप्रेशंस हैं, फिजिकल बिलीफ सिस्टम्स हैं, अंधविश्वास, फिर मेरे स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स बन जाएंगे, नहीं, स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम माना क्या, मेरे नए बिलीफ सिस्टम बन जाएंगे, कि बाबा तो इस संबंध से मेरे साथ है। बाबा ने आज क्या कहा, बाबा सर्व, आज का वरदान में क्या था, सर्व संबंधों से बाबा आपके साथ है, हर जगह आपके साथ है, हर स्थिति में आपके साथ है, बाबा स्नेह और सहयोग की गोदी में हमको लेके जा रहे हैं, परमात्म स्नेह की गोदी में हम बाबा के बैठे, हमें कुछ करना नहीं है, बाबा सब कुछ करा रहा है। बाबा ने कहा आज मुरली में, योग में कोई काम गलत नहीं हो सकता है। वैसे हमारे कितने विचार चलते हैं एक मिनट में, 30 विचार चलते हैं, एक ही बात के 30 विचार चलेंगे, तो वहां पे गलती हो जाएगी, हो सकती है, क्योंकि योग माना क्या, अब मेरे मन में सिर्फ दो ही विचार चल रहे हैं, तीन ही विचार चल रहे हैं, तो तीन विचार चल रहे हैं माना अब क्या होगा, अब वो काम एक्यूरेट होगा, समय पर टच भी होगा, बाबा भी बुद्धि में डालता रहेगा, बच्चे नहीं अब ऐसे नहीं, ऐसे कर लो बच्चे, ऐसे करो ऐसे करो, बाबा की शक्ति भी मिलती रहेगी और काम एक्यूरेट होगा, जल्दी हो जाएगा। बाबा की याद में अगर रह के काम करते, कोई काम कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ये 100% गारंटी है। तो ऐसे हमारी नई रिकॉर्डिंग होते हैं, स्मृतियां नहीं बन, नई स्मृतियां बन रही, नए संस्कार बनते जाएंगे। तो ये है मनमना भव, कि जितना बाबा की मुरलियां, ये है तरीका मनमना भव होने का, जितनी बाबा की मुरलियां, बाबा की मुरली के पॉइंट्स 69 से लेके अभी 2016-17 तक बाबा कितनी मुरलियां चली हैं, ये हमारा कोर्स है, साकार मुरलियां हैं, पांच साल 65 से 69 तक की, जो बार बार रिवाइज होती है। तो ये बाबा की मुरलियां और ये बाबा की 69 से लेकर 48 साल की जो बाबा की मुरलियां चली हैं, तो ये हमारा कोर्स है। एक एक मुरली हमें बाबा की अनुभव करनी है, एक एक बाबा की मुरली का एक एक पॉइंट, उस पर मनन चिंतन मंथन सिमरण करके उस गहराई से जाओ, एक एक संकल्प जो बाबा मुरली, एक एक लाइन में जो महावाक्य में संकल्प है, उसकी गहराई में जाओ, उसको भावना में परिवर्तन लाओ। ये पुरानी भावनाएं, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाली भावनाएं जो हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, देवान की दे के संबंधों के लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाली भावनाएं निकाल दो, तब निकलेंगी। निकालने की कोशिश करने से निकलेंगी नहीं, अंधेरा कभी निकालने से निकलता नहीं है। आप एक कमरे में अंधेरा हो तो निकाल सकते हैं क्या, आप उसको निकाल सकते हैं, अंधेरा निकालने से निकलता नहीं, झाड़ू से निकाल सकते हैं क्या, वैक्यूम क्लीनर से अंधेरे को निकाल सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर लगा दो सारा अंधेरा को खींच ले, ऐसा हो सकता है, नहीं निकाल सकते। ऐसे ही हमारे अंदर जो भरा पड़ा है, देखे संबंधों का भाव, देखे विकारों का भाव भरा पड़ा है, देखे पदार्थों की याद भरी पड़ी है, वो निकालने से निकलती नहीं है, भूलने से भूलती नहीं है। इसकी बजाय क्या करो, बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति करो, एक एक बाबा के एक एक महावाक्य की अनुभूति करो, है ना, एक एक ज्ञान के बिंदु की अनुभूति करो, वो नई अनुभूतियां, है ना, नई इंप्रेशंस, नए बिलीफ सिस्टम्स और नई स्मृतियां, नए संस्कार रिकॉर्ड होते जाए। तो ये बाबा की जो मुरली है ना, यही सब कुछ है। मनमना भव होने का साधन ही मुरली है, बाबा सत्य है, बाबा की मुरली सत्य है। तो जितना इसका हम मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, भावना में परिवर्तन आएगा, उसे वाइब्रेशन बनेंगे, और वाइब्रेशन बनने से फिर हमारे अंदर जो हम उसी को बार बार लंबा बार बार उसको सोचते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे उसी बातों को, बाबा की बातों को सोचते रहेंगे, बार बार मुरली को बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो जितना करेंगे उतना हमारी वृत्ति परिवर्तन होगी, अब हमारा आभामंडल बड़ा होता जाएगा, उस आभामंडल में ऑटोमेटिक हमसे कर्म अच्छे होंगे, बाबा की याद में रह के कर्म होंगे, बाबा हमारे साथ होगा, हर संबंध से हमारे साथ होगा, हर जगह साथ होगा, हर समय साथ होगा। तो बाबा के साथ के अनुभव के जो हम कर्म करेंगे, वो हमारे सच्चे ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण कहें या ईश्वरीय संस्कार बनते जाएंगे, है ना, हमारे फरिश्तों के संस्कार बनते, देवता के संस्कार बनते जाएंगे, आत्म मन स्थिति में रहने के संस्कार बनते जाएंगे, वो नए संस्कार ऑटोमेटिक देह के संबंध, देह के संबंध जो बाबा ने कहा, स्थाई याद कैसे रहेगी, स्थाई याद तब रहेगी जब हम देह और देह के संबंधों को बुद्धि से बाहर निकाल देंगे, और निकलेंगे ऐसे निकलेंगे नहीं, निकालने से निकलेंगे नहीं, बाबा को अंदर से डालते जाओ, है ना, बाबा की मुरली को अंदर डालते जाओ अपनी रिकॉर्डिंग में, तो क्या होगा, ऐसे हमारा मन जो परिवर्तन, मतलब हमारी स्मृति में बाबा, मनमना भाव का क्या अर्थ हुआ, मेरी स्मृति में बाबा मैं आत्मा हूं, मैं कहता हूं उसको एबीसीडी कहता हूं यूजली, है ना, एबीसीडी। ज्ञान का सार एबीसीडी है। ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध, डी माना ड्रामा। तो ये स्मृति में रिकॉर्ड हो जाए एबीसीडी, है ना। मैं स्थूल अपने आप से बार बार अंदर म्यूजिक बजता रहे हमेशा, जैसे चलता फिरता म्यूजिक, है ना, ऑटोमेटिक अंदर से बजता रहे, बाहर से नहीं। कई लोग कान में म्यूजिक लगा के ना, वो रिकॉर्डिंग लगा के, मोबाइल लगा के चलते, वो कान खराब हो जाते हैं, थोड़ी देर में कान बहरे हो जाते हैं। वो करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर म्यूजिक बजना चाहिए, अंदर मुरली बजनी चाहिए, अंदर से। क्या जो गोप गोपियां बताते हैं, गोपियां गोपियां अंदर कान में म्यूजिक लगा चलती थी क्या, मोबाइल जेब में डाल के चलती थी क्या, है? सुना है आपने गोप गोपियां म्यूजिक म्यूजिक लगा के चलती थी? नहीं, अंदर बजनी चाहिए। एक बार मुरली सुन ली, बाबा की मुरली सारा दिन अंदर बजती रहे, बजती रहे, बजती रहे। बाबा ने आज कहा, बाबा ने कहा मीठी मिठाई खानी है, सबको बांटनी है ना, बाबा ने ऐसे कहा, मुझे याद करो बच्चे, सब सबको भूल जाओ, मुझे याद करो, है ना। दो वचन, मनमना भव मध्याजी भव, है ना, अलफ और बे, है ना। तो मुझे ये बाबा को, मतलब मुझे बोलने का मौका मिले नहीं, मुझे भाषण करने का सबको मौका नहीं मिलता है ना, सबको भाषण करने का मौका मिलता है क्या? किचन में काम करने वाला भाषण करने का मौका मिलता है क्या? या और भी बहुत सारे माताओं को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है, भाइयों को मौका नहीं मिलता है। आप क्लास, आप किसी ऑफिस में उस पीएन हो, या आपके सब ऊपर आपके बॉस है, आप उनको ज्ञान सुना सकते हो क्या? जो तो अंदर अंदर बैठे बैठे तो काम कर सकते हो ना, तो कहेगा ये पीएन, ये चपरासी बहुत अच्छा है, सदा मुस्कुराता रहता है। कैसे मुस्कुराता है? फिर अपने आप को भी बॉस बुला के पूछेगा, भैया तुम सदा मुस्कुराते कैसे रहते हो, तुमको टेंशन नहीं होती कभी, आप तो इतना सबसे प्यार से बात करते हो, कैसे बात करते हो? फिर आप बताओ कि हाँ ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा परिचय दे दो, है ना। जैसे मैं था ना, जब मैं एमडी कर रहा था, मैं एमडी उस समय कर रहा था, तो मुझे याद आता है जब मैं एमडी मेडिसिन कर रहा था दिल्ली में, दिल्ली के हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में, तो मैं सदा मतलब अपने जैसे बाबा के ज्ञान में तब था मैं, तो मैं हमेशा बहुत ही शांत रहता था, कभी कुछ कहता नहीं था किसी को भी, कुछ डिमांड नहीं करता था। तो जो मेरी हमारी जो मैडम थी, मेरी जो गाइड थी, वो एक मैडम थी, कुमारी थी वो, वैसे तो 55 साल की होंगी, 52-53 साल की होंगी। तो और दूसरी जो वो थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी मैडम थी, वो उससे बड़ी थी। तो वो जो है मेरे को वो बहुत मतलब तीन हमारी मैडम थी, तीन यूनिट, तीनों की हेड जो मैडम थी, तो वो जो है आपस में बहुत, तीनों आपस में बहुत लड़ती थी, आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी, और इगोइस्टिक थी तीनों की तीनों, तीनों कुमारियां थी, शादी तीनों ने नहीं की हुई थी। तो अब जो है हम, और एक दूसरे से हम आपस में बात नहीं कर सकते थे, एक रेजिडेंट दूसरे डॉक्टर से, मैं जिस मैडम के साथ मैं था, मैं दूसरी मैडम से दूसरे से बात नहीं कर सकता, दूसरी मैडम से, और दूसरे वाला तीसरे से बात नहीं कर सकता था। मतलब हम लोग जैसे उनके रिजर्व थे, रिजर्व माना उनके पर्सनल जैसे होते ना, ऐसे थे। किंतु मेरी मैडम जो थे ना, जो मैं तो मतलब सोल कॉन्शियस रहता था, बाबा की याद में रहता था, बाबा की मुरलियां पढ़ता रहता था, पेशेंट भी देखता था, तो मैं सदा मुस्कुराता भी रहता था, टेंशन में नहीं आता था। तो मेरी जो हेड द डिपार्टमेंट थी, जो मतलब टोटल सबकी सारे डिपार्टमेंट की हेड थी, वो मुझे देखती थी, तो कहती तुम ना, एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो क्या करती, अपने जूनियर अपने से नेक्स्ट जो था ना, नेक्स्ट जो मैडम थी, मेरी मैडम भी अगर उसको मिलना होगा तो बाहर चक्कर काटती रहती थी, अंदर एकदम डायरेक्ट बुलाती नहीं थी, एकदम डायरेक्ट नहीं बुलाती थी, कहती वेट कराती थी उसको कि मैं बड़ी हूं तुमसे, तुम वेट करो बाहर। तो मुझे एक दिन बुलाया, कहती डॉक्टर गुप्ता आप सदा एकदम इतने शांत कैसे रहते हो? तो मैंने कहा मैडम ऐसे ही बस शांत रहता हूं, मैंने ये नहीं कहा मेडिटेशन करता हूं। तो कहते शांत, पता नहीं तुम कुछ तो करते हो, तुम शांत रहते हो, बाकी लोग तो इतने कभी गुस्सा करते हैं, कभी कुछ जल्दी करता है, कभी रोज रोज शिकायतें आती, तुम्हारी कोई शिकायत कभी नहीं आती। मैंने कहा मैडम मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, मैं तो बस ऐसे शांत रहता हूं बस, पर आप मुस्कुराते भी रहते हो। मैंने कहा मैडम तो नेचर ही है मुस्कुराने की, तो मैं क्या करूं, तो नहीं नहीं तुम कुछ करते हो। मैंने कहा मैडम मैं ना सुबह सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करता हूँ। कहती हाँ मुझे अब पता लगा ना, आप बताया ना तुमने, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं सुबह सुबह फिर हमारे सेंटर होते हैं ब्रह्मा कुमारी के, वहां पर रोज मुरली भी सुनने जाता हूँ। तो कहती अच्छा, तो मुझे भी कुछ सुनाओ ना ज्ञान जो तुम सुन के आते हो, मुझे सुनाओ। तो मैंने इसको थोड़ा सा बेसिक बात ही बताई आत्मा के बारे में, परमात्मा है कैसे कैसे क्या करता है। फिर वो मुझे कहती है अच्छा तुम ना जब तुम्हें टाइम लगे ना तुम मेरे पास आ जाया करो, जब तुमको टाइम लगे तुम मेरे पास आ। मैं तो बाकी तो बड़े बड़े डॉक्टर भी उसके बाहर वेट करेंगे और मैं चाहूं जब चाहूं उसके पास चला जाऊं। तो देखो आप है ना, तो जब आप अपने अंदर भावना परिवर्तन आप कर लेते हो, आपका वृत्ति बदल जाती है। कहती आप मेरे कमरे में आए मुझे शांत, मेरा दिमाग शांत हो गया है ना, आप मेरे कमरे में आए ना मेरा दिमाग शांत हो गया। ये तो दिमाग बेचैन जैसा होता है ना, बेचैन माना एक के बाद एक विचार, एक के बाद विचार आता है। तो आप कभी भी आपको टाइम लगे एक बार मेरे पास जरूर आ जाया करो, दो मिनट के लिए आओ आ जाया करो। तो ये जो ये क्या ये क्या स्थिति है, जितना अपने साथ अभ्यास, बाबा ने कहा खूब अभ्यास करो, बाबा ने बार बार कहा ना अभ्यास करो, अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो, चलते फिरते उठते बैठते, बाबा ने कहा बाथरूम में भी करो, ब्रश करते भी करो, शेव करते भी करो, जो भी काम कर रहे हो, खाना खाते भी करो। मैं कई बार करता हूं, मैं सोचता हूं ब्रश कर रहा होता मैं अपने आप से बात करता हूं, क्या मैं मुर्दा कभी ब्रश कर सकता है क्या? तो कौन ब्रश कर रहा है? आत्मा ब्रश कर रही है। शेव कौन करता है? मैं अगर आत्मा निकल जाऊं तो शेव होगी क्या? कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। कोई भी काम कर, खाना खाते कभी मुर्दा कभी खाना खाते हैं क्या? मुर्दा कभी खाना खाता है क्या? ऐसे खाना खाएगा क्या? खाना चबाता है क्या मुर्दा? तो कौन खाना चबा रहा है? अपने आप से बात करता हूं है ना, ऐसे अपने आप से बात करो। पेशेंट देखते टाइम भी कौन देख रहा है? पेशेंट कभी मुर्दा कभी किसी पेशेंट को देख सकता है क्या? देख नहीं सकता है। कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है। तो ऐसे हर समय चलते फिरते उठते बैठते ये ध्यान रखो। बाबा की जो बातें हैं, बाबा की मुरली की बातें हैं, उनको बार 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 है ना। मुझे मिठाई बांटनी है, मिठाई बांटनी माना क्या? टोली जेब में रखो, सबको टोली बांटता जाऊं ऐसे नहीं। मिठाई माना सत्व प्रधानता बांटनी है, सातों गुणों से भरपूर व्यवहार करना है सबसे। ये व्यवहार मैं करता रहूं, सारा दिन मैं इसी बात में लगा रहा हूं। तो ये मेरी जो मनमना भाव, मेरी स्मृति में भी एबीसीडी, जितना स्मृति में एबीसीडी को रिवाइज करता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा, बार बार रिवाइज और रियलाइज। इमेजिन नहीं करना है, विजुअलाइज नहीं करना है, विजुअलाइज नहीं करना है, अपने आप रियलाइज करते जाओ। श्रीनगर को मुझे श्रीनगर जाना है, मुझे शिमला जाना है, मुझे शिमला को विजुअलाइज नहीं करना है, शिमला कैसा होगा नहीं, मुझे शिमला को रियलाइज करना है। रियलाइज माना मैं आत्मा हूं, कार में बैठा शिमला के सफर चालू किया, शिमला जाकर के देखूं शिमला कैसा है। विजुलाइज करने की बात है क्या? विजुलाइज करने की बात नहीं, रियल क्या है वो शिमला कैसा है। तो रियल सूक्ष्म वतन क्या है, रियल परम धाम क्या है, वो तब मुझे महसूस होगा। बाप कैसा है, मां का संबंध कैसा है, टीचर का संबंध कैसा है, तब मुझे रियल अनुभव होगा। और रियल टिकता है, सत्य टिकता है, सत्य सदा रहता है, और झूठ थोड़ी देर रहता है फिर खत्म हो जाता है ना। सत्य को अंदर पक्का करने का है, सत्य सदा ही है। सत्य सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य माना अविनाशी, जो कभी खत्म ना हो। सत्य की दूसरी परिभाषा सत्य जो कभी बदले नहीं, सत्य कभी बदलता नहीं है, है ना। सारी दुनिया आपको हिला ले, कुछ भी कर ले, सत्य कभी हिलेगा नहीं। और जिसका सत्यता का बल होता है कभी डरता नहीं है वो। जो झूठ पे होते हैं, गलत होते हैं, वो डरते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं। सत्यता वाले कभी डरते नहीं, सत्यता वाले अकेले होते हैं। बड़ी दादी कहा करती थी मुझे, दादी प्रकाशमणि कहा करती थी, कभी कभी दादी प्रकाशमणि के हमारे मेरा काफी आना जाना होता था, रोज ही जाता था दादी के पास मिलने ना। तो दादी मुझे बताती थी, दादी कहती गुप्ता जी जो ये देखो एक मटका होता ना, दिखाई दे रहा है टूटा हुआ है, क्रैक है, टूटा हुआ है रखा, कोई इसको हाथ नहीं लगाता है, उसको कुछ कहता नहीं है, उसको पूछता नहीं है, कोई उसको बजा के नहीं देखता है। जो मटका साबुत दिखाई देता है ना, खरीदने वाला आता है साबुत दिखाई देता है, उसको चारों तरफ से बजा के देखते हैं, आगे भी पीछे भी नीचे से भी इधर से भी, फिर बजा के चारों तरफ देख के फिर कान में लगा के देखते हैं, कान में आवाज आ रही नहीं आ रही उसकी, है ना। तो अगर आपको लोग तंग करते हैं, लोग आपको खींचते हैं, तंग करते हैं आपको, कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपको आप ठीक हो, लोग आपको बजा के देखते हैं ना? है ना, है ना। सत्यता वाले को सहन करना पड़ता है, झूठ वाले को जरा सहन नहीं, टूटे मटके को भी सहन नहीं करना पड़ता, सब जानते हैं टूटा हुआ है, राइट। तो अगर आपको टेस्ट, बाबा ने एक मुरली में कहा था, सत्यता वाले को सहन करना ही पड़ता है, उसी को सब कुछ, और सहन करने वाला ही सहनशाह बनता है। सहन करना कमजोरी नहीं है, नम्रता रखना कमजोरी नहीं है। नम्रता रखना और सहनशीलता ये देवताओं का गुण है, है ना। तो जितना, और देवता बनने के लिए क्या करना पड़ता है, खूब आपको क्या करना पड़ेगा, पत्थर है एक मार्बल का एक पत्थर है, उसको आप गोल गोल पत्थर है, उसको आप देवता की मूर्ति बनाना, क्या करे, जैसे वो कारीगर ने हाथ छीनी हथौड़ा लिया, यूं जरा किया तो पत्थर कहे नहीं नहीं मैं तो रोना शुरू कर दे, पत्थर तो क्या होगा, क्या होगा, पत्थर रोना शुरू कर दे तो क्या होगा, थोड़ी सी छीनी लगाई हथौड़ा लगाया तो क्या होगा, तो फिर देवता बनेगा, मूर्ति बनेगी नहीं, ना आंख आंख दिखाई देगी, ना नाक बनाई देगी, ना मुंह बनेगा, ना नाखून दिखाई देंगे, ना हाथ पैर ढंग से बनेंगे। तो देवता बनने के लिए बहुत सहन करना पड़ता है, और वो बल सत्यता से आता है। जितना मनमना भाव होते जाओगे, जितना मनमना भाव, सत्यता क्या है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा सत्य है, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, सदा है, कभी परिवर्तन नहीं होगा, सदा रहेगा, सारी दुनिया बदल जाएगी किंतु आत्मा परमात्मा का संबंध नहीं बदलेगा, कलप कलप युग युग बदल जाएंगे, आत्मा परमात्मा का संबंध नहीं बदलेगा, दुनिया धोखा दे जाएगी, आत्मा परमात्मा कभी धोखा नहीं देगा, है ना। तो जितना हम आत्मा परमात्मा के संबंध को, एबीसीडी को, डी ड्रामा, इस हिस्ट्री रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और शिव बाबा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, किसी ने मुझे धोखा दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, इंसल्ट की, निंदा की, ग्लानी की, महिमा की, जो भी किया है अच्छा हुआ है, बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैंने उसने गाली क्यों दी, मैंने गाली दी थी उसको पहले, और हिसाब किताब माना कर्मों के हिसाब किताब, हिसाब किताब माना ब्याज, ब्याज, मैंने एक बार हिसाब लगाया था, 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपए उधार लिया था, तो 100 साल के बाद उसका ब्याज कितना बनता है पता है आपको, कितना बनता है, 5,98,00,000 रुपया बनता है, 5,98,00,000 रुपया, मतलब 10 रुपया तो देना ही पड़ेगा, 5,98,00,000 भी देना पड़ेगा। तो ये हिसाब किताब है, अगर 100 साल पहले किसी एक गाली दी थी आपने, तो अब वो आपको 100 कम से कम 1,000 गाली देगा, सुबह भी देगा शाम भी देगा, आपने एक बार इंसल्ट की थी उसकी, 100 बार आपको 1,000 बार इंसल्ट करेगा वो व्यक्ति, तो आपको सहन करना, क्योंकि आपने दी है इसलिए चुपचाप सहन करना है, अगर सहन करके मुझे बोल दिया तो फिर और हिसाब किताब आगे बढ़ जाएगा, और 1,000 और 100 गुना हो जाएगा, चुपचाप, इसलिए बाबा मिला है, सागर मिला है समाने की शक्ति का, सहन करने की शक्ति का सागर, तो उसको जो करना है कर लो, जिसको जो कहना है कह लो, इंसल्ट करनी है, धोखा देना, जो मर्जी कर लो, बाबा मेरा सब, मुझे बोलना नहीं है, मुझे सबको रिगार्ड देना, सबको आदर सम्मान देना, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बराबर वाले, कोई कुछ भी करे, मुझे बोलना नहीं। तो ये सत्यता की शक्ति, जितना मनमना भाव होते जाएंगे उतना मैं मध्याजी माना मेरे अंदर से देहवान ईगो निकलती जाएगी। लास्ट में मैं ये बात कहना कहूंगा, देखो 5 विकार हैं, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम विकार निकालने के लिए अंदर से ज्ञान चाहिए, ज्ञान की गहराई चाहिए और पवित्रता चाहिए। ज्ञान माना एबीसीडी, जितना इस एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे तो उतना मेरे अंदर क्या आता जाएगा, पवित्रता आती जाएगी, और जितनी पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में टिककर स्थित होकर दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, ना किसी से लगाव, ना किसी से झुकाव, ना किसी के प्रभाव, ना किसी का टकराव, ये भी अपवित्रता है, चारों बातें भी अपवित्रता है, किसी के प्रति लगाव रखना, किसी के प्रति झुकाव रखना, किसी के प्रति किसी के प्रभाव में आ जाना, किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, एक शिव बाबा के प्रभाव में रहना चाहिए, रिगार्ड सबको देना चाहिए, छोटा बड़ा, बड़ों को रिगार्ड, छोटों को प्यार, क्योंकि सब में सब बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के परिवार में सब इतने पुराने पुराने अनुभवी हमारे दादियां हैं, दीदियां हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, वरिष्ठ भ्राताएं हैं, सब हैं, सबको रिगार्ड, क्योंकि उन्हें बहुत अनुभव है उनके जीवन में, क्योंकि तो प्रभाव शिव बाबा का रहना है, प्रभाव किसी व्यक्ति का नहीं आना चाहिए, और टकराव किसी से भी ना, क्योंकि लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, जब बाबा को याद करने बैठोगे वही याद आएंगे, तब पवित्रता हुई नहीं हुई, और कभी भी क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है। ड्रामा में ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करते हैं, ये भी अपवित्रता है। वैध संकल्प हुआ ना, तो ये पवित्रता जितना इस इतने ज्ञान की गहराई और पवित्रता जितना इस ज्ञान का इस एबीसीडी का हम अनुभव रिवाइज और रियलाइज करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते बाबा की मुरली का अनुभव करते जाएंगे, उतना मन बुद्धि पवित्र होता जाएगा और उस पवित्रता से काम विकार अपने आप खत्म होता जाएगा। और जब ऐसी पवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर हमारे अंदर शांति आएगी। शांति माना, शांति का अर्थ है कि ना पास्ट का चिंतन ना भविष्य की चिंता, ना पास्ट का चिंतन ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर सोचना बोलना कर्म करना संबंध संपर्क में आना खाना सैर करना घर या ऑफिस में काम करना कहीं भी कुछ करना है बाप से कंबाइंड होकर कर्म करो, वर्तमान में रहना, ना पास्ट में सोचना ना भविष्य की सोचना, यह शांति की स्थिति है। पास्ट का चिंतन जरा भी ना हो, जब पवित्रता आएगी तो शांति अपने आप ही पास्ट का चिंतन खत्म हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, फिर बाबा को साथ कंबाइंड कर लो और फिर कंबाइंड होकर कोई भी कर्म करो, देखना है बोलना है खाना है सुनना है, तो यह है शांति की स्थिति। जब ऐसी शांति आएगी और रूहानी प्यार, ऐसे शांति से रूहानी प्यार पैदा हो, रूहानी प्यार क्या होता है, रूहानी प्यार माना विश्व में हर आत्मा के प्रति, विश्व में हर आत्मा के उस रोल उसके रोल के साथ उसके पार्ट के साथ, उसका जो रोल है समाज में जो भी रोल हो सकता है, वो आपका पति भी हो सकता है पत्नी भी भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है दोस्त भी हो सकता है डॉक्टर भी हो सकता है इंजीनियर कुछ भी हो सकता है, उसको उसके रोल सहित आदर से स्वीकार करना, आदर के साथ स्वीकार करना और ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर उसकी पालना करना। आदर स्वीकार तो किया पर ईश्वरीय मर्यादा के बाहर जाके मैं उसकी पालना करूं वो पाप है, राइट? ईश्वरीय मर्यादा के अंदर पालना करना, जैसे बाबा है ना, बाबा सबके प्रति क्या है, सबको क्या करता है, हर एक आत्मा चाहे कैसे आतंकवादी भी हो डाकू भी हो स्मगलर भी हो सबको हवा पानी सब पांचों तत्व भरपूर दिया है। ये नहीं कहता कि डाकू है इसको नहीं दूंगा, इसको स्मगलर है इसको नहीं देंगे, इसको आतंकवादी को नहीं देंगे, सबको सबको भरपूर अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड इन द यूनिवर्स, हर एक आत्मा के प्रति किसके बारे में संकल्प ना चले ऐसा क्यों है ऐसी क्यों है वैसा क्यों, सबको एक्सेप्ट करना, यह है रूहानी प्यार। तो जब शांति और रूहानी प्यार आएगा हमारे अंदर भरपूर होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारे अंदर क्रोध खत्म हो जाएगा, तब क्रोध खत्म होगा। जब सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, जजमेंटल नहीं होना है किसी के प्रति, जजमेंटल नहीं होना है ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों, जजमेंटल नहीं, ये तो है ही बदल नहीं सकता, ये तो बिगड़ा हुआ, ये तो सुधर नहीं सकते, ये तो ऐसे हैं, मैं देखा ना 20 साल से सुधर नहीं सुधरेगा ही नहीं है तो सुधरेंगे नहीं, ये जजमेंटल होना है। भगवान ने हम सर्टिफिकेट किसको कैसे क्यों दे सकते हैं, भगवान ने सर्टिफिकेट नहीं दिया हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको। जजमेंटल होने वाला कभी भी भगवान के प्यार को अनुभव नहीं कर सकता है, जो सबको स्वीकार करता है वो भगवान के प्यार को अनुभव कर सकता है, क्योंकि भगवान का प्यार सबके लिए है। अगर मैं इसी में फंसा हुआ हूं, ये ऐसा ये ऐसी वो वैसा वो वैसा वो वैसा, तो भगवान का प्यार कैसे अनुभव करेंगे, भगवान का प्यार भाषण कर सकेंगे किंतु अनुभव नहीं कर सकेंगे। सबको माफ कर देना, सबके साथ चलना, सबको एक्सेप्ट करना स्वीकार करना दिल से स्वीकार करना आदर देना, ये है रूहानी प्यार। तब गुस्सा खत्म होगा, तब क्रोध पे विजय होगी, ना पास्ट रहेगा ना भविष्य रहेगा, सिर्फ वर्तमान में बाबा से कंबाइंड रहेंगे तो गुस्सा खत्म होगा, नहीं तो क्रोध आता रहेगा कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। और जब हम ऐसी स्थिति हमारी अचीव हो जाती तो हम क्या, हम बाबा के दिल में समा जाते हैं, बाबा हमको दिल में रख लेता है अपने, क्योंकि ये बच्चा ऐसा बच्चा मेरा सबको प्यार करता है सबको एक्सेप्ट करता है, बाप समानोगे ना तो बाबा के दिल में हम समा जाते हैं, बाबा हमारे दिल में समा जाता है। तो ये है अतिंद्रिय सुख की अनुभूति, बाबा सदा मेरे साथ है ऐसी फीलिंग होना, बाबा की छत्रछाया है मेरे ऊपर है, सिर्फ बाबा की छत्रछाया मेरे ऊपर है, मैं बाबा की गोद में हूं, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, ये अतिंद्रिय सुख की अनुभूति। और अत्यंत सुख की अनुभूति जब उसको होती है उसको लोभ खत्म हो जाता है। इच्छा क्या होती है? नाम मान शान की इच्छा होती है, पैसे की इच्छा होती है, उसे ही लोभ कहते हैं ना। तो जब बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, संतुष्ट हो गए, संतोष आ गया, तो और इच्छा खत्म हो गई, तो ये क्या हो गया? लोभ खत्म हो गया। सब इच्छाएं आप ही खत्म, इच्छा मात्र में विद्या स्थिति आती है। तो इस स्थिति का अभ्यास कैसे हुआ? वही एबीसीडी से हुआ, वही ज्ञान से, वही मुरली से होगा। जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाएंगे तो हमारे अंदर लोभ खत्म होता जाएगा, और जितना फिर हम आनंद की अनुभूति करेंगे, आनंद माना जब हम बाबा आत्मा परमात्मा के प्यार, आनंद माना आन माना बंधन, जब आत्मा देह और देह, आत्मा तो उड़ता पंछी है, आत्मा जब देह और देह के बंधन से पार चली जाएगी, बाबा की याद में खो जाएगी, लवलीन हो जाएगी, ना देह का भान रहेगा, ना देह की दुनिया का भान रहेगा, वो स्थिति, बाबा की याद में खोने वाली स्थिति, ऐसी स्थिति जब होगी तो उसे आनंद कहते हैं। और जब आनंद होगा तो क्या होगा? मोह खत्म हो जाएगा, तब मोह खत्म हो। मोह का इलाज है आनंद। जब बाबा से ऐसा अनुभव होगा, बाबा की याद में खोए रहेंगे, तो देह और देह की दुनिया अपने आप मोह खत्म हो गया। तो इसकी अनुभूति जितनी गहराई से बढ़ाएंगे उतना मोह खत्म हो जाएगा। माताएं इसका स्पेशल अभ्यास करना चाहिए, भाइयों को भी होता है किंतु माताओं को थोड़ा कहते ज्यादा होता है, तो इसका ज्यादा अभ्यास करना चाहिए, है ना। और जब सर्वशक्तियां आ जाएंगी, जब ऐसी आनंद की अनुभूति होती है, अत्यंत सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, तो हमें प्रखनिक शक्ति आती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मुझे ये आनंद एक सेकंड का, पांच सेकंड का, एक मिनट का आनंद की अनुभूति हुई ना, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो अत्यंत सुख की अनुभूति चाहिए, मुझे इसके लिए सब करूंगे, 4 बजे उठेंगे, 2 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, बाबा को याद में रहेंगे, ऐसे करेंगे, एक भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे, कहीं खान पान में गलती नहीं करेंगे, परख लेते हैं, तुरंत परखने की शक्ति आ जाती है। मुझे ऐसा बोलना नहीं है, भले कुछ मर्जी बोले, मुझे बोलना नहीं है, चुप रहना है, मुझे मुस्कुराते रहना है, मुझे खुश रहना है, अपने आप परखने की शक्ति आएगी। विवेक, परखने की शक्ति माने विवेक, विवेक जागृत हो जाए, ईश्वर जैसा विवेक हो जाएगा। फिर निर्णय करने की शक्ति आती है, मुझे तो यही करना है, सारी दुनिया मुझे छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं निर्णय मुझे यही करना है। जब ऐसा निर्णय करेंगे, जब ऐसा निर्णय करेंगे, फिर बड़ी बात को छोटा करना सीखेंगे, विस्तार को सार मिलाना सीखेंगे, कछुए के माफिक, तब समेटना सीखेंगे, तब सहन करना सीखेंगे, तब सहन करना आएगा, नहीं तो सहन करना आएगा नहीं। उस आनंद की अनुभूति के पीछे जब हम करेंगे ना, तो आनंद आएगा, तब हमें सहन करना आएगा, तब समाना आएगा, नहीं तो अभी तो छोटा, अभी तो हम राई का पहाड़ बना देते हैं, समेटते नहीं है, बिखरा देते हैं, सहन नहीं करते, सहन करते नहीं है, समाते नहीं है। और जब संभालेंगे तो सामना करना, नई प्रॉब्लम आएंगे उनको फेस करना सीख जाएंगे, निर्विघ्न बनना सीख जाएंगे, विघ्न विनाशक हो जाएंगे, और सबको सहयोग, सबको हेल्प करना सीख जाएंगे। तो जब आठों शक्ति आएंगी तो अहंकार खत्म होगा। सबसे लास्ट में अहंकार है ना, अहंकार सबसे बड़ा है, क्योंकि अहंकार, इसलिए कहा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, मुझे बहुत ज्ञान आता है, योग का भी अहंकार हो जाता है, धारणाओं का भी अहंकार हो जाता है, सेवा का भी अहंकार हो जाता है। तो अहंकार तोड़ने के लिए आठों शक्तियां चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति चाहिए, समेटने की शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, और सामना करने की शक्ति चाहिए, और समेटने की शक्ति, और सहयोग करने की शक्ति चाहिए। आठों शक्तियां होंगी तो हमारा ये होगा, तब हम बनेंगे सचमुच मायाजीत बनेंगे। तो ये है, जब हम ऐसे मायाजीत तो हम मनमना भव बनेंगे, तो हम मध्याजी भव बनेंगे, क्योंकि देह विमान निकलेगा ना, जब ईगो निकलेगी ना अंदर से, अहंकार निकलेगा, तो हम मनमना भव, तो हमारी माया जीत माना, फिर हम बन गए क्या? प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत पहले बनेंगे, फिर माया जीत बनेंगे, फिर विकर्म, फिर प्रकृति जीत माना, पांचों तत्व, शरीर हमारे वश में हो जाएगा, ये पांचों तत्वों का बना हमारा शरीर हमारे वश में हो जाएगा, बीमारी तंग नहीं करेंगी, तकलीफ नहीं तंग नहीं करेंगी, आसपास खाना पीना कम ज्यादा तंग नहीं करेगा, है ना, गर्मी ठंडी तंग नहीं करेगी, और तब विकर्माजीत बनेंगे। जब विकर्माजीत बनेंगे तो लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे, तो हम क्या बनेंगे? कर्मातीत बनेंगे, कर्मों का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, कर्मातीत बनेंगे, तो अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे, कर्मयोगी फरिश्ता बन के बाबा के घर में, हम फरिश्ता यहां बनना है, मुरली में था ना पीछे, फरिश्ता यहां बनना है, ऊपर जाके नहीं बनना है, फरिश्ता यहां बनना है, फरिश्ता माना जिसने कर्मेंद्रियों पर जीत हो, उसकी माया पे जीत हो, पांचों विकारों पे जीत हो, है ना, और फिर क्या हो, प्रकृति जीत, अपने तन पे जीत हो, ये बीमारी यहां हो रही है, ये हो रही, ऐसे बुद्धि इधर उधर नहीं जाए, कहां कुछ भी हो रहा है फीलिंग ही ना हो, दे कि भान अशरीरी फीलिंग हो, और फिर जो अशरीरी होगा ऐसा प्रकृति जीत होगा, वो विकर्मा जीत बनेगा, विकर्मा जीत होगा तो करंट आएगी, लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे, और फिर क्या बनेंगे, कर्मातीत हो जाएंगे, कर्मातीत होंगे तो फिर फरिश्ता बनेंगे, ठीक है। तो मतलब हम क्या बन जाएंगे, मध्याजी भव। तो इस तरह से मनमना भव, मध्याजी भव। ओम शांति।